دوسرا واقعہ آپ کے قتل کی کوشش کا وہ ہے فتح خیبر، آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت زینب بنت الحرس، کس کی بیوی تھی، زوجہ کون تھی، سلام بن مشکم، نے ایک بکری کا گوشت بھون کر تیار کیا اور اس میں زہر ملا دیا۔ پھر یہ معلوم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا حصہ زیادہ مرغوب ہے۔ پھر جب معلوم ہو گیا کہ دستی کا گوشت خاص طور پر پسند ہے، تو اس نے اس میں باقی گوشت سے زیادہ مقدار میں بہت ہی تیز قسم کا مہلک، مہلک کیا ہوتا ہے، ہلاک کر دینے والا، مہلک زہر ملا دیا۔ پھر یہ گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے تحفے میں بھیجا۔ حضور نے لقمہ منہ میں رکھا، شاید کچھ حصہ نگلا بھی گیا ہو، اور جلد ہی تھوک بھی دیا۔ فرمایا کہ اس گوشت نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، پھر خود بھی نہیں کھایا اور ساتھیوں کو بھی روک دیا۔ بعد میں اس یہودیہ کو بلایا گیا تو اس نے اقرار کر لیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کے پیچھے بہت سے یہود کی سازش کام کر رہی تھی۔ حضور نے جب مجلس عام میں ان کو بلوا کر بات کی تو انہوں نے بھی اعتراف کیا، مگر بات یہ گھڑی گئی کہ ہم نے آپ کی جانچ کرنا چاہی تھی کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر حقیقت منکشف یعنی کھل جائے گی، ورنہ ہم کو نجات مل جائے گی، کس سے، ایک جھوٹے نبی سے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے کھانے میں زہر تھا، ذرا کوئی آپ کو تو کہہ کے دیکھے، آپ کی دعوت کی اور کھانے میں بال ہی نکل آئے، زہر کو تو پیچھے کر دیں، کوئی مکڑی نکل آئے، کوئی چونٹی نکل آئے، کوئی جان کے مکھی ڈال کے نکال دے، آپ اس کے ساتھ کیا تعلق رکھیں گے، آپ تو اپنی نسلوں کو کہہ جائیں گے کہ کبھی ان کے گھر کا نہ کھانا۔ لیکن اللہ کے نبی نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کھانے کی اس مجلس میں جو صحابہ شریک تھے، ان میں حضرت براء بن معرور بھی شامل تھے، انہوں نے لقمہ لیا اور زہر کی تلخی محسوس کرنے کے باوجود بتقاضائے ادب، اس کو نوٹ کیجئے گا، اللہ کے نبی کا ساتھی ہے، محسوس کر لیے کہ زہر کی ہے تلخی، لیکن ادب کے تقاضے سے نفس سلم کے سامنے اگلنا پسند ہی نہیں کیا، اور کسی نہ کسی طرح اسے حلق سے اتار لیا۔ اسی ایک لقمے کے زہر سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ذرا سا اس کے اوپر غور کریں، ہم برا جیسے ہیں، برا بن معرور کی جگہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو زہر کی تلخی کو محسوس کر کے بھی کھا لیتا، ہم تو یوں ہوں کرتے۔ ہاں اللہ اکبر۔ تیسرا واقعہ، تبوک سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی اور منافقین کے دل اس مہم کی کامیابی سے بھنے جا رہے تھے، کیونکہ ان چھپے دشمنوں کے ارمان کچھ اور تھے، تو انہوں نے حضور کے قتل کی ناپاک سازش باندھی۔ اس سازش میں 12 آدمی شریک ہوئے، عبداللہ بن ابئی، سعد بن ابی سرح، ابو فاطر عرابی، ابو عامر راہب، جلاس بن سویت، مجمع بن جاریہ، ملیح تیمی، حسن بن نمیر، تعیمہ بن ابیرق، عبداللہ بن عیینہ اور مرہ بن ربی تھے۔ سازش کی مجلس میں جلاس نے کہا کہ آج رات ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ سے گرائے بغیر نہ رہیں گے، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہم سے بہتر ہوں، مگر ہم لوگ بکریاں ہیں اور یہ ہمارے چرواہے بن گئے ہیں، ہم گویا بے عقل ہیں اور یہ لوگ بڑے خرد مند ہیں۔ نوٹ کریں ذرا، اپنے آپ کو کیسے پریٹینڈ کرا رہے ہیں، خرد مند کس کو کہتے ہیں، عقل مند کو۔ اسی شخص سے یہ قول بھی منسوب ہے کہ اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تو پھر ہم لوگ تو گدوں سے بھی بدتر ہیں۔ دیکھیں نیگیٹو کمنٹس پیش کرتے تھے آپ کے اوپر، ہاں بہت بڑا بننے کا شوق ہے، ہاں ہمارے ساتھ تو ایسے جان کے کرتے ہیں، اور یہ تو ڈسکریمینیشن اور یہ ہے اور وہ ہے، اور یہ جملے اگر ہمارے بارے میں کوئی کہے اور ہمیں لگ پتہ جائے تو ہم کبھی اس سے بات نہ کریں۔ لیکن اللہ کے نبی کو پتہ بھی چل جاتی تھی یہ باتیں، لیکن سیلف لیسلی آپ آگے بڑھتے گئے۔ عبداللہ نے کہا تھا کیا آج کی رات جاگو تو پھر ہمیشہ سلامتی سے رہو گے، تمہارا کوئی کام اس کے سوا نہیں کہ اس شخص کو آج قتل کر دو۔ مرہ نے کہا تھا بس اگر ہم اس ایک شخص کو قتل کر دیں تو سب کو اطمینان ہو جائے گا۔ ذرا سوچیں یہ جملہ کس کے لیے بولا جا رہا ہے۔ ان میں سے حسین بن نمیر کا ایک کارنامہ یہ تھا کہ اس نے صدقے کے مال پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ ان میں سے ابو عامر بظاہر راہب تھا اور صوفی و درویش بنا پھرتا تھا، مگر مسجد درار کے فتنے کا بانی تھا اور غسان اور روم کے حکمرانوں سے हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजबाज रखता था। इसके लिबास तकवा में तरह तरह के शर रक्स कर रहे थे। ये जुमला नोट किया आपने? लिबास तकवा क्या होता है? अंदर की हालत, अंदर की शख्सियत। बज़ाहर ऊपर दीन का रूप था लेकिन अंदर खोट था। तय पाया कि हजूर जब अकबा से गुजरें तो इनको नीचे गिरा दिया जाए। इसी मंसूबे के मुताबिक ये 12 मुफसदीन हजूर के साथ साथ लगे रहे। हजूर जब अकबा के करीब पहुँचे तो इरशाद फरमाया कि जो लोग बतन वादी, बतन किसको कहते हैं? दामन। वादी ऐसे होती है ना, चारों तरफ पहाड़ है तो अंदर खाली जगह है, तो ये अंदर की बात है। बतन वादी के कुशादा रास्ते से होकर जाना चाहें वो इधर से जा सकते हैं। आपने अकबा का रास्ता लिया। सहाबा की कसीर तादाद बतन वादी की तरफ चली गई, मगर साजिशी गिरोह बतौर ख़ास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा। हजूर की निगाह यूं भी दिलों की गहराई में उतर कर मख्फी जज्बात को पढ़ लेने वाली थी। इसको नोट करें, ये भी आपकी एक खूबी थी। लोगों के अंदर के छुपे हुए जज्बात को चेहरों से पढ़ लेते थे, और एक अच्छे लीडर की खूबी होनी चाहिए। और फिर अपने सामने पर पुर्जे निकालने वाले मुनाफिकीन का नफ्स शनास आपसे बढ़कर कौन होगा? यानी जिस तरह लोगों की अंदर की खूबियाँ भी जान लेते थे ना, तो उनकी खामियाँ भी उनको दिखने लगती थी। और फिर अपने सामने पर पुर्जे निकालने वाले मुनाफिकीन का नफ्स शनास आपसे बढ़कर कौन होगा? फिर अल्लाह ताला ने गैबी इशारा देकर आपको इस चाल से मुत्तले भी कर दिया। आपने दो रफ़ीकों को साथ लिया, एक हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान थे, दूसरे अम्मार बिन जासिर थे। हज़रत अम्मार को हुक्म दिया कि वो आगे रहें, और नाका, नाका क्या होती है? फीमेल कैमल, ऊँट की, यानी जैसे गाय और भैंस है ना, और उधर सांड है, तो नाका मुअन्नस ऊँट को कहते हैं, नहीं ऊँट नहीं कह लीजिए, और नाका की मुहार थामे। और हज़रत हुज़ैफ़ा से फरमाया वो पीछे पीछे चले। जब अकबा का ख़ास मुकाम आ गया तो साजिशी टोली लपकती हुई आई। रात की तारीकी भी थी और उन्होंने चेहरों पर निकाबें भी डाल रखी थी। हजूर को आहट हुई तो साथियों को हुक्म दिया कि वो इन लोगों को पीछे लौटा दें। हज़रत हुज़ैफ़ा लपक कर गए और इन लोगों का ऊँट दिखाई दिया, और उन्होंने अपना तरकश इसकी थोथनी पर मारा। वो लोग हज़रत हुज़ैफ़ा को जब पहचान गए तो समझे कि राज फाश हो गया, और पीछे भागकर लोगों में घुल मिल गए। हज़रत हुज़ैफ़ा वापस हुए तो हजूर ने हुक्म दिया कि इस मुकाम से ऊँट को तेज़ हंकाकर निकाल ले चलो। फिर हज़रत हुज़ैफ़ा से पूछा गया कि क्या तुमने इन लोगों को पहचाना? उन्होंने कहा फलां और फलां की सवारी तो पहचान ली मगर आदमी नहीं पहचाना। हजूर ने पूछा कि तुमने इनका इंदिया समझा? इंदिया यानी उनका इरादा या जो मकसद था। उन्होंने नफ़ी में जवाब दिया। फिर हजूर ने इनको ख़ुद आगाह किया कि ये हमें अकबा से गिरा देना चाहते थे। ये आपको किसने बताया? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही युहा। वही के ज़रिए आपको बता दिया गया था कि ये आपकी जान लेना चाहते हैं। सुबह हुई तो हजूर ने इशारे गैबी के मुताबिक नाम ब नाम इन 12 साजिशियों को तलब किया, यानी नाम लिए कि फलां किधर और फलां किधर है, और हर एक के दिली जज्बात और मजलिस से साजिश में कही हुई इसकी बातों को इसके सामने रख दिया, और बारी बारी हर एक से सफाई तलब की। ऐसे जैसे किसी की बातों की रिकॉर्डिंग उसको सुना दो कि आपने ये कहा था, ले सुने आपने क्या कहा था। आज का रिकॉर्डर ज़्यादा बात रिकॉर्ड कर सकता है, या वही के ज़रिए जो बात आती थी वो मुस्तनद थी। इनके जवाब बड़े दिलचस्प रहे होंगे। मसलन हुसैन बिन उमैर कहने लगा, मुझे यकीन न था कि आपको खबर होगी, मगर आज मालूम हुआ कि वाकई अल्लाह के रसूल हैं। इससे कबल मैं सच्चा मुस्लिम न था, सिद के दिल से इस्लाम लाता हूँ। सब ने इस तरह की मुख्तलिफ बातें बनाईं, उज़र की, और बाज़ ने माफ़ी चाही। हजूर ने सबसे दरगुजर फरमाया। काफ़ी ज़ोरदार रिवायात इस मुदा से मुराद इसको बयान करने वाली हैं कि अल्लाह के नबी ने इन अशख़ास के नाम सिर्फ़ हज़रत हुज़ैफ़ा को राजदारी से बता दिए थे और आम मुसलमानों पर फाश नहीं किए। इलावा अज़ीं यानी इसके अलावा इन नामों में से बास के बारे में जुज़वी इख्तलाफात हैं। नीज़ इनमें दो तीन अफराद के बारे में ये बहसें भी की गई हैं कि कम से कम बाद में इनके अंदर कोई अलामत निफाक नहीं पाई गई, मगर असल वाक़या अपनी जगह तारीखी तौर पर साबित है, और इसी का ज़िक्र कुरान ने हमू बीमा लम य नालू, कहाँ है याद बोलिए? नहीं याद आपको? किस में जंगे तबुक का ज़िक्र है? सूरह तौबा में। जी ये उसी की आयत है, हम मुंह उन्होंने इरादा किया बीमार साथ उसके लम जो नहीं ये नालू वो पा सके, यानी इस चीज़ का इरादा बंदा जिस तक ना पहुंच सके कह दिया। किस चीज़ का इरादा फिर हुआ? आपके कत्ल का इरादा। इस मुसन इंसानियत की आला जरफ़ी की कोई मिसाल ढूंढ के लाओ तारीख से, जो नौ इंसानी की खिदमत के लिए खून पसीना एक करके इनकलाब बर्पा करता है, और चंद अशरार ऐन दौरे कशमकश में इसके कारनामे की जड़ काटने के लिए इसके कत्ल का मंसूबा बनाकर अमली इकदाम भी करते हैं, इनका राज फाश भी हो जाता है और वो इकबाल भी कर लेते हैं, लेकिन वो मिराज इंसानियत इतने बड़े जुर्म पर भी अफ से काम लेता है। हजूर से दरख्वास्त भी की गई कि आप इनमें से हर एक के अहले कबीला को हुक्म दें कि वो अपने अपने आदमी का सर आपके सामने लाकर पेश कर दें। जवाब में आपने फरमाया, मैं ये पसंद नहीं करता कि अरबों में ये चर्चा हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को साथ लेकर दुश्मनों का मुकाबला किया और फिर जब गलबा पा लिया तो खुद अपने साथियों को कत्ल करने लगा। हजूर का मंशा ये था कि तहरीक इस्लामी की असल ताकत इसकी इम्तियाजी शान बरकरार ना रह सकेगी, सो अपनी जान के लिए खतरात भी अंगेज कर लिए, और नौ बनो यानी नए फितनों और शरारतों का मुकाबला करना भी गवारा कर लिया, मगर ये पसंद न किया कि हालात को काबू में रखने के लिए जबर व कुव्वत का लठ चलाएं और जहाँ कोई खराबी देखें इसे इक्तदार और कानून के ज़ोर से बेतहाशा कुचल दें। इंसानी माशरे का निज़ाम चलाते हुए बेशुमार हिकमतें और मसाले पेश नज़र होते हैं और इस्लाह की बहुत सी तदबीरें मुख्तलिफ पहलुओं से इस्तेमाल करनी होती हैं। इस्लामी इनकलाब आम दुनियावी इनकलाबों से ज़्यादा कठिन इसीलिए है कि इसकी नाजुक अखलाकी रूह का तहफ़ कदम ब कदम करना पड़ता है, और इस आईने में कहीं कोई अमूमी गलत फहमी और किसी मुखालिफाना प्रोपेगंडे का गुबार ना आ जाए। इन्हीं वाक़यात में से एक ये भी है कि यहूदियों ने आप पर जादू का हमला किया। अभी तक कितने वाक़यात हम पढ़ चुके हैं? तीन बड़े बड़े वाक़यात पढ़े हैं। अब एक और वाक़या, यहूद ने आप पर जादू का एक हमला किया। बहादुर दुश्मन वो होता है जो खुलकर मुकाबला करे, और अगर वो जान के दर पे हो तो चैलेंज करके खुल्लम खुल्ला हमलावर हो, लेकिन यहूदियों में इतना बलबूता न था, चुनाचे वो साजिश की राह पर पड़े जो बुजदिलों और कमीना फितरत लोगों की राह होती है, लेकिन इससे आगे जादू टूनों वजीफ़ों और झाड़ फूंकों के ज़ोर से वो लोग किसी पर हमला करते हैं जो दू हिम्मती और सिफलगी के लिहाज से आखिरी मर्तबे से भी फरोतर यानी आगे बढ़ जाते हैं। सो इन लोगों ने बुग़्ज़ के मारे ये घटिया हरकत भी हजूर के ख़िलाफ़ कर डाली। क्या पता चला कि आप पर जादू भी कर दिया। बहुत कम लोगों पे जादू किया गया होगा सिर्फ इसलिए कि उसको मारा जाए। अल्लाह के नबी के साथ ये भी हो गया। बनी ज़ुरैक का एक शख्स लबीद बिन आसिम यहूदियों का हलीफ था और मुनाफिकाना शख्सियत का हामिल। इसके हाथों अमले सहर करवाया गया। एक यहूदी लड़का अपनी अच्छी फितरत की वजह से नबी सल्लम की तरफ मायल था और आपकी खिदमत किया करता था। इसको मजबूर करके बाज़ यहूद ने हजूर के सर के बाल और कंघी के दंदाने हासिल किए और इन पर जादू का अमल करके 12 गिरोहों वाला गुंडा सा बनाया और ज़िरवान नामी कुएं में इसे रखवा दिया। अहदीस में आता है कि इस अमल सहर की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीब सी कैफियत महसूस करते थे, किसी काम का ये ख्याल फरमाते कि वो कर लिया है हालांकि ना किया होता। जिनसी मेलान पर भी कुछ असरात अलकाए रब्बानी से आप इस अमल सहर से आगाह हुए, यानी अल्लाह ने आप पर अलका किया कि आप पर जादू हुआ। वो गंडा निकलवाया गया और आपकी तबीयत मामूल पर आ गई। इस वाक़े से मुतल्लिक एक मशहूर बहस ये चलती है कि नबी पर सहर का असर हो सकता है या नहीं। एक नुक्ता नज़र यह है कि कतन असर नहीं हो सकता। इस दलील को लेकर मुनकरीन हदीस ने हदीस को नाकाबिले एतमाद साबित करने में भी इस्तेमाल किए, हालांकि एक नबी का इंसानी जिस्म जिस तरह इमराजों दरबातों और जहर से असर लेता है, इसी तरह इसके नफ्सियाती कवा भी हर तरह के ज़ाहिर व पिन्हा मुहरकात से असर लेते हैं। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर फिरौन के जादूगरों के अमल को देखकर ज़हनी असर हुआ और आपने इनकी रस्सियों को सांप महसूस करके खौफ महसूस किया। फौज सफ़ी नफ्स ही खीफत मूसा सूरत आयत 67 है। जादू के जिस असर की नफ़ी अम्बिया के हक़ में की गई वो ऐसा असर है जो कार नबूवत में कादे हो। یعنی نبوت کے کام جس سے رک جائیں اور ذہن کسی دوسرے کے قبضے میں چلا جائے اور قوت ارادی کی باگ ڈور ہاتھ سے بالکل چھوٹ جائے۔ اس بحث سے قطع نظر یہ واقعہ مان لینے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں کہ یہود نے اپنی طرف سے حضور پر عمل سحر کرنے کا اقدام کر ڈالا، ان کا جرم اپنی جگہ ثابت ہے۔ یہ واقعہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اس وقت ہم پر اس تشویش کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے جو حضور کی جان کے متعلق مدنی دور میں اسلامی جماعت یعنی صحابہ کرام کو لاحق رہتی تھی۔ حضور کو اگر کبھی رات کے وقت گھر سے نکلنا پڑتا تو رفقاء کو سخت اضطراب رہتا۔ طلحہ بن برا نے انہی حالات کو مد نظر رکھ کر مرض الموت میں وصیت کی کہ اگر میرا دم واپسی رات کو مقدر ہوا، یعنی اگر میں زندہ واپس آ گیا، تو حضور کو اطلاع نہ کی جائے کیونکہ یہود کی طرف سے خطرہ ہے، خدا نخواستہ دشمنوں کے ہاتھوں کو گزند پہنچے۔ اگر حضور اتفاقا نگاہوں سے ذرا بھی اوجھل ہو جاتے تو رفقاء میں گھبراہٹ پھیل جاتی اور وہ تلاش میں نکل کھڑے ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ کی وہ مشہور اور معرکۃ الآرا حدیث جس میں شہادت لا الہ الا اللہ کو داخلہ جنت کی ضمانت قرار دیا گیا، اپنے اندر ان حالات کی ایک جھلک رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے اور ہماری اس مجلس میں حضرت ابو بکر اور عمر بھی شامل تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھ کر کہیں چلے گئے اور خاصی دیر لگا دی۔ ہمیں تشویش ہوئی کہ اگر ہمارے ساتھ موجود نہ ہونے کی صورت میں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ہم لوگ اس خیال سے گھبرا گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ جس پر سب سے پہلے گھبراہٹ طاری ہوئی وہ میں ہی تھا، سو میں حضور کی تلاش میں ہی نکل پڑا۔ سچ بتائیں کہ آج ہمارے لیے یہ حالات آئے ہیں؟ اللہ نہ کرے کبھی آئے، اگر آ جائیں تو کیا ہم اس دین پہ جمے رہیں؟ ہم تو وہ سیکیورٹیز لے کر آتے ہیں، تحفظات لے کر آتے ہیں کہ دین ہمارا یہ 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 ڈسٹرب نہیں کرے گا، پھر آئیں گے، اور دین کے کام کے بعد یہ 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 سیکیورٹیز ہیں، پھر ہم چلتے ہیں۔ اور ذرا سی انسیکیورٹی ہو، گھر میں ہی جھگڑا ہو جائے، ہم کہتے ہیں خدا حافظ۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اس دین نے ہمیں کتنے بڑے بڑے فتنوں سے روکا ہوا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں ابو ہریرہ؟ کھوج لگاتے لگاتے حضرت ابو ہریرہ بنو نجار، کون سا قبیلہ تھا یہ یاد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال، بنو نجار کے ایک انصاری کے باغ تک جا پہنچے۔ احاطے کی دیوار کے گرد گھوم پھر کر دیکھا کہ کدھر کوئی دروازہ ہے، کوئی احاطہ لمبا ہوگا، اور گھبراہٹ اور جلدی میں ان کو نزدیکی راستہ نہ ملا۔ آخر انہوں نے دیکھا کہ پانی کی ایک نالی احاطے کی دیوار کے نیچے سے گزرتی ہے، سمٹ سمٹا کر، یعنی آپ دیکھیے چھوٹی سی نالی، ایسے امیجینیشن میں لا جیسے پائپ نہیں ہوتے پانی کے، اس میں سے گھس کے گئے۔ سمٹ سمٹا کر، ان کے اپنے الفاظ ہے کہ میں لومڑی کی طرح سمٹ کر نکلا۔ اور آپ کہتے تھے کہ لومڑی کے جسم میں نا فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، تنگ جگہ میں ہوتی ہے نا تو ایسے اپنا پتلا پتلا کرتی جاتی ہے اور نکلتی ہے باہر جا کے، پھر اصل شیپ پہ آ جاتی ہے۔ نالی کی راہ سے اندر پہنچے، حضور کو وہاں دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ اس کے بعد پھر گفتگو ہوئی جس میں حضور نے مشہور بشارت دی، کیسے کیسے صحابہ کے حالات تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی آپ کیفیت کو محسوس کریں نا تو واقعی انسان اپنے بارے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے، کس طریقے سے آپ وہاں موجود تھے۔ ایک صحابی خاص کے اس بیان کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے یہ کون تھے، ابو ہریرہ، کہ یہود و منافقین کی نت نہیں، نت نہیں کیا ہے، نہیں نہیں، قاتلانہ سازشوں کے باعث مدینہ کی فضا کیسی رہتی تھی اور حضور کی زندگی کن خطروں سے گھری رہتی تھی، مگر وہاں اعتماد علی اللہ کا حال یہ تھا کہ ایک بار انہی خطرات و خدشات کو پیش نظر صحابہ کرام نے حفاظتی پہرے کا انتظام کیا، مگر حضور نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق کہ واللہ یعصمک من الناس، سورۃ مائدہ 68، اللہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا، اسی وقت خیمے سے سر باہر نکال کر فرمایا، لوگوں واپس چلے جاؤ، میری حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ ایمان دے دے۔ یہ وہی ایمان تھا جو حضور کے خلاف ارادہ قتل کر کے گرفتار ہو جانے والے ایک مجرم کے سامنے بھی ظاہر ہوا، جب کہ آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ مجھ کو قتل کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا انسانیت کی اس معمار کے مقام کا تصور کیجئے، یہاں دل سے کہیے اللہم صلی علی محمد۔ معمار کون ہوتے ہیں؟ جو عمارتیں بناتے ہیں۔ हकीकत है कि अल्लाह के नबी ने वो इमारत बनाई कि जो आज तक कायम है, लेकिन उनके साथ क्या क्या हुआ तसव्वुर कीजिए। क्या कि जिसके गिर्द कत्ल की साजिशें इश्क पेचां की बेलों की तरह नशो नुमा पाती थी। इश्क पेचां क्या होता है? शदीद मोहब्बत जो करते हैं ना, वो भी चिमटे रहते हैं, यानी जैसे किसी के साथ उससे मोहब्बत करने वाले चिपके रहते हैं ना, इस तरह आपके इर्द गिर्द आपको कत्ल करने वाले चिपके हुए थे और फितने तिंदवे के तारों की तरह फैले थे। मदीना में कुछ मकड़े बैठे थे और दिन रात वो बेशय शिजात के शेर का शिकार करने के लिए जाले तनते रहते थे। आसान जुमला बोल देती हूँ, मदीना में कुछ ऐसे मकड़े बैठे थे जो दिन रात नबी सल्लम का शिकार करने के लिए जाले तनते रहते थे। इन हालात में क्या ज़िंदगी थी? ज़रा सा आप अपने ऊपर लेकर सोचें, अभी जो कुछ पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी इन हालात में रहते थे ना, डिप्रेशन था, स्ट्रेस लेवल बढ़ा, शुगर लो हुई, ब्लड प्रेशर हाई हुआ। ये जो हम ज़रा सी एबनॉर्मेलिटी में क्या कहते हैं आप, हाइपर हो जाते हैं, बस 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 कुछ नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं रह सकती। और ये जो गुस्से में हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, वो असल में हमारे अंदर रुक नहीं रही ना चीज़, तो बाहर आ गई। तो अपना अंदर बड़ा करें, असल ये बात है। जिनका अंदर बड़ा होता है ना, उनको बड़े बड़े हालात में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, काम करना और बात है, काम है नहीं है वो और बात है, लेकिन आप अपना मिजाज ख़राब ना करें, बदतमीज़ ना बने। आप अपने बच्चे को कुछ कहते हैं, उसने नहीं किया तो नहीं किया ना, उसने जुर्म किया मान लेते हैं, बट आप बदतमीज़ी करके चीख के चिल्ला के उसके आगे अपने आप को कमज़ोर करके बद अखलाकी का इजहार करते हैं। कभी किसी के सामने कमज़ोर ना पड़ें, हल्के ना पड़ें। इधर मक्का का कोहे आतिश फिशां भी रोज़ बरोज़ ज़्यादा खोलता चला जा रहा था, यानी मक्का से निकाल कर भी उनके सीने ठंडे नहीं हुए, और इसके सीने में भी इनाद और कमीन की कलावा बराबर जोर कर रहा था। हिजरत से पहले हजूर के कत्ल की जो बहुत बड़ी इज्तमाई साजिश की गई थी, अगरचे इसने बाकायदा जंगी मुहिमात की शक्ल इख्तियार कर ली थी, मगर इन खुली खुली मुहिमात की नाकामियाँ कत्ल की खुफिया साजिशों की महरक भी बन रही थी। मार्के बदर में नबी सल्लम की मुट्ठी भर जमात ने मजलूमाना सब्र के नाम से हक की तह तैग, यानी सच की तलवार, तेज़ तलवार तैगे बर्क के दम निकाल कर जब अपने हाथ दिखाए थे, तो फरजंदाने जाहिलियत को वो चरके लगे थे जिनकी टीसों ने इन्हें बरसों आतिशे जेरे पा रखा। कोई घराना न था जिसके अच्छे अच्छे सरदार और जवान खेत ना रहे हों, लेकिन गिनती के चंद बेसरो सामान इनकलाबी मुसलमानों के हाथों से मार खा कर अब उफ की सदा निकालना भी मज़ीद रसवाई का सबब था। इसलिए कुरैश ने मनादी करा दी कि कोई शख्स मकतूलीन बदर का मातम न करे। इस लड़ाई में अस्वद के तीन बेटे मारे गए थे और इनका कलेजा कट रहा था, मगर मुँह से भाप नहीं निकाल सकता था। एक दिन इसे रोने की आवाज़ सुनाई दी, खादिम से कहा कि ज़रा देखना क्या रोने की इजाज़त हो गई है। खादिम ने दरियाफ्त करके बताया कि एक औरत का ऊँट गुम हो गया, वो इसके लिए रो रही है। अस्वद के जज्बे को इस इत्तला ने महमीस किया और बेख्तियार इसने चंद शेर अलापे जो ख़ास अदबी कदर कीमत रखते हैं, इनमें से तीन शेर के हैं। कहते हैं, तुब की हैं युदिल लहा बहीरुन, क्या वो एक ऊँट के खो जाने पर रोती है। वह यम नौ खा मेना नौ मिल सहूद, और क्या इसको नींद नहीं आती, यानी इतनी छोटी सी बात पे वो रो रही है। वला तबकी अला बकरिन वला किन अला बदरिन तकासर तल जदूद, कहते हैं कि ऊँट के लिए ना रो, रोना है तो बदर के हादसे पर रो लो कि जहाँ क्या हुआ, जहाँ नसीब पोता हो गया, किस्मतें छोटी हो गईं। व बकी अन बकी तला अकील व बकी हारिसन असद अल अस्वद, रोती है तो फिर अकील के लिए रो और इस हारिस के लिए रो जो शेरों में से एक शेर था। यानी नौहे करते थे ना कि ऊँट पर रो रही हो तुम, इतने बड़े बड़े जवानों पर रो। मक्का के ऐसे गम आगी माहौल में उमैर बिन वहाब और सुफान बिन उमैया यकजा बैठे मकतूलीन पर रो रहे थे। सुफान ने कहा, अब जीने में लुत्फ नहीं रहा। उमैर कहने लगा, अगर मुझ पर कर्ज ना होता और बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं सवार होकर जाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर आता। मेरा बेटा भी वहाँ कैद पड़ा है। सुफान ने उसके बच्चों और कर्ज़ की जिम्मेदारी ली और उमैर ने फौरन घर आकर तलवार जहर में भुजाई, यानी तलवार के ऊपर जहर लगा देते थे कि अगर कोई तलवार के वार से बच भी गया यानी मर ना सका तो वो जहर अंदर जाएगा तो थोड़े दिन में उससे मर जाएगा। और मदीना रवाना हो गया। वहाँ पहुँचा तो हज़रत उमर ने इसके मख्फी जज्बे को इसकी पेशानी से पढ़ लिया और गले से पकड़े पकड़े हजूर के सामने लाए। आपने हज़रत उमर से फरमाया इसे छोड़ दो। करीब बुलाया, पूछा किस इरादे से आए हो। उमैर ने कहा कि बेटे को छुड़ाने आया हूँ। पूछा कि ये तलवार क्यों लटका रखी है। उमैर ने कहा आखिर तलवारें बदर में क्या काम दे सकें, यानी कहा कि अगर मैं ले भी आया हूँ तो मुझे पता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हजूर ने अब इसके सीने का राज निहां खोल के इसके सामने रख दिया कि तुमने और सुफान ने हुजरे में बैठकर मेरे कत्ल की साजिश की है, लेकिन अल्लाह तुम्हारे और तुम्हारे इस इरादे के बीच में हायल है। खबर दे दी जो किसी को नहीं बताती। उमैर ने यह सुना तो मबहूत हो गया। मबहूत होना क्या होता है? हैरान। कुरान में कहाँ ये लफ्ज़? फबुहित अल्लज़ी कफर। कौन था वो अल्लज़ी? कौन था? नमरूद। शाबाश। हैरान हो जाना, यानी ऐसी बात सुनना कि जिसकी उम्मीद ही ना, और फिर बंदे के चेहरे पे उसके असरात दिखें। बोला, बखुदा आप सच्चे पैगंबर हैं, मेरे और सुफवान के अलावा इस मामले की और किसी को खबर ना थी। उमैर मुसलमान होकर वापस मक्का पहुंचा और जुरत के साथ इस्लाम की दावत दी और बहुत बड़ी तादाद को इस्लामी इनकलाब के झंडे तले ले आया। तो जो कत्ल के इरादों से आए थे अल्लाह ने उनको भी इस्लाम दे दिया। फतेह मक्का के मौके पर फ़ुदाला बिन उमैर के सीने में भी इंतकाम की बिजली कौंधी। दिल ही दिल में हजूर के कत्ल का इरादा बांधा। हजूर बैतुल्ला का तवाफ़ कर रहे थे कि फ़ुदाला नमूदार हुआ। करीब आया तो आपने फरमाया फ़ुदाला तुम हो, और इसने जवाब दिया हाँ या रसूलुल्लाह फ़ुदाला। फरमाया क्या बात तुमने अपने दिल में ठान रखी है। फ़ुदाला घबरा कर जवाब देता है कुछ भी नहीं, मैं तो खुदा का जिक्र कर रहा हूँ। हजूर ये जवाब सुनकर हंस पड़े और नसीहत की कि खुदा से मगफरत तलब करो। बस जब हम दिल में कुछ सोच रहे होते हैं ना, और अगले को हमारे चेहरे से पता चल जाता है, हमारे एक्शन से, हमारे बैठने के अंदाज़ से पता चलता है कि ये उठने की तैयारी में है। अब ये भाग रहा है, अब ये उठना चाह रहा है। अब एकदम अगर अगले को वो बात कह दें तो अगला एकदम परेशान तो हो ही जाता है। खैर, और ये कहते हुए अपना हाथ फ़ुदाला के सीने पर रख दिया और उसका दिल ठिकाने आ गया। फ़ुदाला का बयान है कि हज़ूर ने जब अपना हाथ मेरे सीने से उठा लिया तो खुदा की मखलूक में से मेरे लिए हजूर से बढ़कर और कोई महबूब न रहा। दुआ करें हमारे भी दिल ऐसे ही बन जाए, नबी की सच्ची मोहब्बत से भरे हुए। फुजाला इस कल्बी इनकलाब से गुजर कर घर चले गए। क्या पता चला? दुश्मनों से और जान लेने की नीयत करने वालों से भी अल्लाह के नबी ने मोहब्बत का मामला किया। अब एक और मामला, फातह मक्का, बल्कि फातह अरब के ख़िलाफ़। एक शख्स कत्ल का इरादा बांध कर आता है और इसकी बारगाह से नई ज़िंदगी लेकर रवाना होता है। कारी ज़ख्म लगाने आता है और अपने ज़ख्मों के लिए मरहम ले के जाता है। क़ुरैश और यहूद और मुनाफ़िकीन सब के सब अपनी चालें चलते रहे, मगर अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा कर दिखाया और आखिर दम तक अपने बंदे और अपने रसूल की हिफाजत फरमाई। इन साजिशों का असल मकसूद मुजर्रद एक फ़र्द का कत्ल नहीं था, इसको भी नोट करें, यानी ज़ाती तौर पे नबी सल्लम की ज़ात को हटाना गोल नहीं था। सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लिखें ज़ाती दुश्मनी कोई नहीं थी। जो बंदा नबी सल्लम से मिलता अल्लाह की रहमत से आपका गर्विदा होता, आपके आला अखलाकी गवाहियाँ देता, आपकी ज़ात में कशिश थी। बट दुश्मनी उस पैगाम से थी जिसके आप अलम्बरदार थे। याद रखिए आज भी ऐसा ही होता है। ज़ाती तौर पे लोगों को आपसे कोई रंजिश नहीं होती। लोग कहते हैं आप अच्छे इंसान हैं, आप बात अच्छी करते हैं, लेकिन हाँ जो आपका अकीदा है वो हमें गड़बड़ लगता है, और जो आपकी सोच है वो ठीक नहीं, और आप पता नहीं कौन है, और आप वहाबी हैं, और आप सुन्नी, और आप फलाँ हैं और फलाँ हैं। तो अल्लाह के नबी से ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, बल्कि ये लोग इस्लामी तहरीक को कत्ल करना चाहते थे। ये सच्चाई की सुबह दरख्शां को मौत के घाट उतारना चाहते थे, जिसके दामने नूर के नीचे तारीकियों के लिए कोई जगह ना थी। ये इस निज़ामे नौ का गला काटना चाहते थे जिसने सदियों के ज़ख्म खुर्दा मज़लूम तबकों को पहली मर्तबा ज़िंदगी, आज़ादी, मसावात और इज़्ज़त व आबरू से माला माल किया था। तो ये थी कत्ल की साजिशें, यानी हसद इतनी बुरी चीज़ है कि अगले की जान लेते। बिलफर्ज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, सोचिए ये अल्लाह के नबी की जान लेने में कामयाब हो जाते तो क्या इस्लाम का ये कारवा रुक जाता? वो कहते हैं कि ज़िंदगी में 12 थे, उनके बाद मिलियंस में आज नसारा। तो कोशिश करनी है कि मुश्किलात से घबरा कर अपने आप को और दीन पे जमाए ना के पीछे करें। हमारे लिए इसमें बहुत अमल की बात है, वरना एक इन्फॉर्मेशन थी। ऑफ कोर्स इस पे दुख भी महसूस करें, लेकिन अपने लिए अमल की बात रहें कि वो कहते हैं ना कि तुम दिए वादे मुखालिफ से ना घबरा के औकाफ, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हम ज़िंदगी में मुश्किलात या मसाइब की वजह से जब पीछे हटते हैं ना, ये हमारा गलत फ़ैसला होता है, और जब हम जम जाते हैं तो फिर हमें फ़ायदा होता है, फिर हम उस चीज़ के ऊपर मौजूद होते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।